तो अगर हम पहले से कुछ आदतें लाए, जैसे बदला लेने की किसी के प्रति, तो वो भक्ति में आ जाते हैं, और फिर हमारे भक्ति में वो व्यक्ति बन जाती है। तो उसको हम कैसे सामना कर सकते हैं, कैसे उसके पर आ सकते हैं, इसमें दो अलग अलग चीज़ें हैं। सबसे पहले ये है कि वी हैव टू प्रैक्टिस डिवोशन द वे वी आर। हम जैसे हैं वैसे हमें अभी भक्ति करनी है। ऐसे नहीं है कि एक दिन हम उड़ जाएंगे और कुछ भगवान कृष्ण उस रात सपने में आ गए होंगे और हमें सारी जो बुरी आदत चली गई है, ऐसे नहीं है। हम जैसे भी हमारी कंडीशनिंग है, जैसे बद्धावस्था है, उसी में हमें भक्ति करनी है। और वास्तव में हमारी जो बद्धता है, वह जब हम देखते हैं समझते हैं, तो उससे नम्रता आती है। हम कहते हैं कि हमें नम्र बनना है भक्ति करने में, पर नम्रता आती कैसे है? हमारी बद्धता जब हम देखते हैं, अरे मुझे ऐसे नहीं करना है पर फिर भी वैसे ही हो रहा है मुझसे, उससे हम समझते हैं कि मैं वास्तव में असहाय हूँ, मैं स्वयं अकेला कुछ नहीं कर सकता, मुझे भगवान की मदद चाहिए। तो इसीलिए यह देख के हमें नम्रता से और भगवान का आशीर्वाद ग्रहण कर सकते हैं। छोड़ना है पर छोड़ नहीं पा रहा हूँ मैं इसको। तो इसलिए इसका हम ऐसे किसी अपेक्षा में नहीं रहना है कि एक दिन चला जाएगा, ये जैसे है उसके साथ ही मुझे भक्ति करनी है। और हमारे अलग अलग कंडीशनिंग होते हैं, अलग अलग बद्धता होती है। तो कुछ बद्धताएँ कुछ महीने भक्ति करने से लग जाती है, कुछ बद्धता ऐसे होते कुछ साल लग जाते हैं, कुछ बद्धता ऐसे कोई कई कुछ शत दश व्हाट इज डिकेड्स दशक शतक दशक ओके okay, शतक सेंचुरी दशक लग जाते हैं। तो ऐसे नहीं है कि कोई बद्धता है इसीलिए मैं भक्ति नहीं करूँगा। जैसे भी बद्धता है, मुझे भक्ति तो करती ही रहनी है। और जब बद्धता आ जाती है तो फिर उससे नम्रता आ सकती है। हम कुछ साल तो भक्ति करते रहते हैं, परिवर्तन होता है, हम थोड़े वरिष्ठ बन जाते हैं, तो उससे गर्व भी आ सकता है। तो जब हम कैसे बद्ध याद आएगा, तो उसे नम्रता आती है। ये एक चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि हम जब कुछ ऐसा बर्ताव हो जाता है जो उसे हमें नहीं करना है, तो वी नीडेंट सी दैट एज अ फेलियर, वी कैन सी दैट एज अ लैप्स। ये एक पराजय नहीं है, ये सिर्फ एक छोटी सी गलती है। इसका मतलब क्या है कि अगर हम हमारे जो बद्धता देखते हैं, तो ऐसे नहीं है कि वो बद्धावस्था के अनुसार हम 24 घंटे वैसे ही कार्य कर रहे थे। हाँ, मैं दिन में एक बार, हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार, जो भी है, ऐसे ऐसा विचार हमसे हो जाता है, ऐसे कार्य वैसे हमसे हो जाता है। तो क्या है उसके बीच में हम क्या कर रहे हैं? हम सब हमारे जीवन में कभी सत्वगुण में भक्ति करते समय भी कभी सत्वगुण में होते हैं, कभी रजोगुण में होते हैं, कभी तमोगुण में हो जाते हैं। तो रजोगुण तमोगुण में जब हम होते हैं, अभी ये उसमें न जाना लगभग नामुमकिन है, उसमें जाएंगे हम बीच बीच में, और तभी क्या होगा, उसमें नियंत्रण नहीं होता है, नियंत्रण करना बड़ा मुश्किल होता है। पर हम जब सत्वगुण में होते हैं, तब हम देख सकते हैं, विचार कर सकते हैं, ठीक है उस समय ने ऐसे किया, तो क्या हुआ था उस समय, अच्छा ठीक है ये मैं इस मनस्थिति में था और फिर ये परिस्थिति आ गई, तो इसमें मैंने ऐसी प्रतिक्रिया की। पर अगर मैं पहले इसके लिए तैयार होता था, तो मैं ये परिस्थिति को टाल सकता था। तो हम तैयारी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए, अगर हम किसी रास्ते पे जा रहे हैं, पहली बार जा रहे हैं, और रास्ते में एक खड्डा है, हमारी गाड़ी है, बहुत झटका लग जाता है हमको, तो अगर हम दूसरी बार जाएंगे तो क्या करेंगे? हम देखेंगे, याद रखिएगा यहाँ पे खड्डा है, तो एक दिन में वो खड्डा तो जाने वाला नहीं है, हम सरकार को कोसते रहेंगे ये खड्डा क्यों नहीं जा रहा है, उससे कुछ फायदा नहीं, ठीक है सर खड्डा है, जब बाजू रास्ता हम पहले जब आएगा सतर्क रहेंगे उसके बाजू से चल जाएंगे। तो वैसे ही हम क्या होता है, कई बार हमसे गलती हो जाती है हमसे कुछ, तो उसके बाद में जब हमको याद भी आता है, सिर्फ हम खुद को कोसते रहते हैं, अरे कितना मूर्ख हो तुम, बेवकूफ, ऐसे क्यों किया तुमने, कैसे क्यों किया, क्यों किया, नहीं ठीक है वो हो गया, पर अभी भविष्य में जब वो परिस्थिति आएगी तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं वो खड्डा, जब खड्डा तो है अभी, सिर्फ मैं खड्डे में झटका लग गया, ऐसे बोलने से अगला बार खड्डा में झटका नहीं लगे ऐसे नहीं होगा, खड्डा रहने वाला है, झटका लगने भी वाला है। तो इसीलिए मैं उसको टाल कैसे सकता हूँ, उसके बाजू से कैसे जा सकता हूँ? तो कभी कभी क्या होता है कि मनस्थिति और परिस्थिति दोनों विपरीत होते हैं। कि हम भी पहले से कुछ स्ट्रेस में है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, और फिर कोई व्यक्ति और हमको परेशान करता है, तो फिर क्या होता है, दोनों का संयोग हो जाता है तो विस्फोट हो जाता है। तो फिर अगर पता चल जाता है कि अभी मैं थोड़ा स्ट्रेस में आ गया हूं, तो मेरी परिस्थिति ऐसे हो गई तो मैं इस परिस्थिति में जाऊंगा ही नहीं, अभी मैं इसको टाल दूंगा, इसको बाद में देखते, कि हर समस्या का हल तुरंत करने की जरूरत नहीं है। तो हम अगर खुद की मनस्थिति को समझ लेते हैं, ठीक है, इस मनस्थिति में मुझसे ऐसा कार्य हो जाता है, तो वो मनस्थिति जब आ रही है तो मैं ऐसी परिस्थिति में जाऊंगा, और उसी दूसरी तरह से इस परिस्थिति में मुझसे ऐसे कार्य हो जाता है, तो जब उस परिस्थिति आ रही है तो फिर मैं और चौकन्ना रहूंगा। तो इस तरह से हम योजना कर सकते हैं, और इसमें हम खुद के लिए कुछ हमें पॉज बटन बनाना है। क्या होता है, साधारणतया हमारा क्या होता है, हम सोचते हैं कि हमारी जो भावना है उसको या तो एक्सप्रेस करना है या रिप्रेस करना है, उसको बोलना है या उसको दबाना है, पर ऐसे नहीं, उसको रोकना है। अभी ना नहीं बोलना है, हाँ नहीं बोलना है, सोचना है, प्रोसेस, पॉज, स्टॉप नहीं, प्ले नहीं, पॉज, ठीक है, अभी मैं कार्य नहीं करूंगा, बाद में देखूंगा। मैं लेखक हूं, मैंने एक प्रधान सेवा है लिखना, तो मैं बहुत लोगों से ईमेल पे भी आदान प्रदान करता हूं, तो कभी कभी किसी पे गुस्सा आ गया मुझे तो मैं लंबा चौड़ा गुस्से में मेल लिख देता हूं। पर मैंने कई सालों के प्रयास के बाद एक नियम बनाया खुद के लिए कि मैं मेल लिखूंगा पर वो मेल को 24 घंटों तक सेंड नहीं करूंगा। तो कई बार अभी वो मेल लिखूंगा नहीं मैं, तो अंदर जो गुस्सा इतना रहता है वो बहुत अस्थिर कर देता है, पर अगर वो मेल भेज दूंगा तो उधर गुस्सा हो जाएगा। तो फिर वो जो मेल लिख देते हैं तो क्या होता है, ऐसे जो मन जो विषय है उसको लगता है एक्सप्रेस तो कर लिया खुद को, तो थोड़ा एक्सप्रेस हो गया, फिर क्या होता है, 24 घंटे अगर रुकते हैं तो थोड़ा सा मन शांत हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति कुछ ऐसे मेल भेज देता है, कुछ ऐसी जानकारी चल जाती है, स्पष्टीकरण हो जाता है, ऐसे नहीं था वो, मैं ऐसे सोचा था, ऐसे कुछ और ही था, या फिर 24 घंटे थोड़ा शांत हो गए तो फिर हम देखते हैं, अच्छा ये जो मैं लिखा उसको वापस पढ़ते हैं तो क्या होता है, मन थोड़ा शांत है, देखते हैं, अच्छा ठीक है, ये जो लिखा था मैंने ये बहुत ही तीक्ष्ण है, ये जो लिखा है ये सही है, तो इसे थोड़े शब्द बदल सकता हूँ मैं, ये जो लिखा है इसमें मुझे वास्तव में पूरी जानकारी नहीं है और थोड़ी जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। तो उस तरह से जब हम देखते हैं और फिर मैं मेल लिखता हूं, तो कई बार समस्याओं को हल होने में काफी मदद हो जाती है। तो हमें क्या करना है कि तो मेरे लिए ये 24 घंटा रुकना ये क्या है, एक पॉज बटन है। तो हम सबको हमारे जो उत्तेजित करने वाली परिस्थितियां मनस्थिति में हम जा रहे हैं, खुद को अपना पॉज बटन बनाना है। तो वो पॉज बटन हो सकता है जप करना, जब मैं ऐसे उत्तेजित में जप करता हूं, या हम हर एक के लिए हमको देखना है क्या है, उज्जवल नीलमणि जो रूप गोस्वामी ग्रंथ बोला है उसमें वो एक उद्दीपन नाम की संकल्पना बोलते हैं। उद्दीपन मतलब वो चीज जो हमारे हमें भगवान की स्मृति की ओर प्रवृत्त करती है। जैसे हम सबके लिए कुछ ऐसे इंद्रिय के विषय होते हैं, वह देखने से हम बहुत विचलित हो जाते हैं, तो वैसे ही हमें आध्यात्मिक विषय भी ऐसे हो सकते हैं जिससे हम आध्यात्मिक दृष्टि से आकृष्ट हो जाते हैं। किसी लिए वो कीर्तन हो सकता है, किसके लिए, किसी के लिए वो भगवान के विग्रहों का दर्शन हो सकता है, किसी के लिए वो अपने गुरु महाराज के प्रवचनों का श्रवण हो सकता है, किसी के लिए वो वृंदावन धाम की स्मृति हो सकती है। तो हमें देखना है कि मेरे लिए अनुकूल उद्दीपन क्या है, भगवान कृष्ण की स्मृति मुझे किससे बहुत ही आसानी से आ जाती है, और फिर जब मुझे पॉज बटन दबाना है खुद में, अभी मुझे प्रतिक्रिया आ रही है तो तभी वो करने की जगह पे मैं क्या है, मैं कुछ कीर्तन सुनूंगा, मैं कुछ दर्शन देख लूंगा, मैं कुछ स्मृतियां वृंदावन की स्मृति कर लूंगा, जो भी है, ऐसे अगर हम कर लेते हैं तो फिर उस समय हम खुद को चेक कर सकते हैं, और फिर थोड़ा समय चल जाता है, उसके बाद में हर उचित बर्ताव आ सकता है। तो इस तरह से पहला है कि हम जो बद्धता को देख के नम्रता लाते हैं, और बद्धता के अनुसार कैसे स्मरस्थिति और परिस्थिति में कार्य करते हैं वह समझ के हम तैयारी करते हैं कि खुद को उस समय पॉज कैसे करें, इसके द्वारा हम वो खुद को बदल सकते हैं। ओके, थैंक यू।